نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت پیج 562 قائد ریاست کے وسیع تعلقات. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کیسے مصروف انسان ہونے کے باوجود اور بہت ساری ذمہ داریوں میں جکڑے ہونے کے باوجود کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے, افراد کی سطح پہ, تحریکی سطح پہ, ملکی سطح پہ, یعنی آپ نے لوگوں میں انٹرسٹ لیا. اور یاد رکھیں, ایک جملہ لکھ لیں, لوگوں میں انٹرسٹ لیے بغیر رابطے نہیں ہوتے اور تبلیغ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں آپ کے سامنے جو چیز بیٹھی ہے وہ انسان ہے. تو انسانوں میں انٹرسٹ لے, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, لوگوں کی مشکلات کیا ہیں. بہت سارے لوگ لیے دیے رہتے ہیں, کر رہے ہیں نا, پڑھ رہے ہیں نا, ہٹو بچو, پیچھے ہو جاؤ, ہم سے بات نہیں کرنا. بعض لوگ یقین کریں یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ ہمیں تو بہت خوف آتا ہے, کوئی علم والا ہے اور اللہ رحم کرے اگر شہرت مل گئی تھوڑی سی, کوئی نمبر نہیں دے سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی سلام نہیں کر سکتا. یا جہاں بہت بڑے گروپس ہوں, بہت زیادہ لوگ ہوں, تو سیکیورٹی ایشو بھی ہو سکتا ہے, مینجمنٹ کا ایشو بھی بن سکتا ہے, تو وہ پھر مین ٹیچر تک نہیں آنے دیتے لوگوں کو. آئی نو دیئر پوائنٹ, بٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اتنی چھوٹی سی چیز دور کر دیتی ہے. تو کسی نے اپنا کوئی ایکسپیرئنس شیئر کیا کہ کہیں تھے اور لیکچر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لائن بنا لیں اور آپ ٹیچر سے آ کے ملنا چاہیں تو مل لیں. ان سے صرف ابھی دو لوگ یا ایک آگے تھا تو انہوں نے کہہ دیا, جو بھی یعنی مینجمنٹ والے تھے, کہ اب ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ امیجن کیجئے نا, تو ان کا دل کس پہ کٹا کے تھی, میں صرف ایک ہی تو تھی پاس, ایک یا ان کے آگے ہوں گی کوئی. اس چیز نے مجھے اس پورے ادارے سے پٹ آف کر دیا. یقین کریں اور بھی بہت ساری باتیں لوگ سناتے ہیں کہ آپ لوگ بہت ایزی گوئنگ لگتے ہیں آپ کے ساتھ. تو میں کہتی ہوں ہمارے کوئی پر نہیں نکلے ہوئے, ہم کوئی دوسروں سے الگ نہیں ہیں, ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیں. جو انسانوں کے ساتھ کام کرے, انسانوں کے لیول پہ کام کرے, اسی سے پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کی آواز میں عاجزی آئے گی, نرمی آئے گی, دل سوزی آئے گی, لوگوں کے دل میں آپ کی بات اترے گی, لوگ کہیں گے آپ تو میں اپنے جیسا لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ آج آپ اور میں تو ایک ہیرو ہی سمجھیں, لیکن اپنے دور میں آپ دیکھیے, مدینہ کے والی بن گئے, آخری نبی ہیں, اللہ نے آپ کے ہاتھ سے اتنے بڑے بڑے کام کروا لیے, لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اس کو لگتا دور سے تو ہم بہت ڈرتے تھے. ہر صحابی کہتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے پیار ہے, تو حالانکہ وہ ان کو پیار ہوتا تھا نا. جس کو پیار ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی فلاں بھی کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اپنے بچوں سے بھی یہی رکھیں. آج بہت سارے ماں باپ روتے ہیں, دکھ کرتے ہیں. میں تو ایک جملے میں اس پورے ٹاپک کو پورا کر دوں. بچوں میں انٹرسٹ لیجیے. باپ چلے تو ہمیشہ سے کماتے ہیں, پہلی ماں کا 100% فوکس بچہ تھا, اس کو انٹرسٹ تھا, اس کو اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے دینی. اب خاص طور پہ بیچاری وہ مائیں کہ جن کو دو چکیوں میں پسنا پڑتا ہے, جو جابس بھی کرتی ہیں اور ساری آدھی باہر کی سوشلائزنگ بھی انہوں نے کرنی, پھر وہ بچوں کو تو تھوڑا سا اوور لک کریں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اور آپ کے لیے اور میرے لیے اس میں 100% یہی سبق ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی رینج سے اوپر نہ کریں, اوپر نہ کریں, بہت نیچے نہ کریں, اپنا پروفائل ہمیشہ لو رکھیں. اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ. کوئی بھی نصب العین لے کر چلیے. جی, اب نصب العین کیا ہوتا ہے؟ نصب گاڑنا, جھنڈا نصب کیا, علین آنکھ, آنکھ جس چیز پہ گڑی ہو. کیا ہوتا ہے یہ آپ کا مشن؟ یہ ہے آپ کا مشن. کوئی بھی وہ چیز جو آپ کی نگاہوں میں جڑی بھی ہو, ہلے نا آپ ادھر سے, گاڑی چلاتے ہوئے آپ دیکھیں ڈرائیور ادھر سے ادھر نہیں دیکھ سکتا نا. اسی طرح زندگی میں کسی ایک چیز کو نصب العین بنا لے. اگر آپ کو لوگوں کی اصلاح مطلوب ہے, تبلیغ مطلوب ہے, لوگوں کی خیر مطلوب ہے, یقین کریں آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا موقع نہیں جانے دیں گے. آپ اپنے آرام کو تھوڑا سا کم کر لیں گے, آپ اپنی نیند کو کم کر لیں گے, آپ اپنے مال کی قربانی دے لیں گے, وقت کی دیں گے, پر آپ کہیں گے کہ نہیں, یہ چیز میرے مشن کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو پیچھے کر دو اور دوسری چیز کی طرف لے چلو مجھے. ذاتی تعلقات اور روابط کی وسعت بہرحال اس کی کامیابی میں اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ پیپل پرسن نہیں ہیں آپ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے. مشینوں کو چلانے والے لوگ دو لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, कंप्यूटर खोल के उसका एक एक जोड़ तोड़ खोल कर उसके इधर के उधर लगा लेंगे। इंजीनियर है वो, चार लोगों को अंदर बैठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। तो एक लीडर और एक कायद, उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, और एक माँ होने के नाते भी इसमें ये खूबी होनी चाहिए। आप एक माँ हैं, आपके चार बच्चे हैं, आपके चार कम्युनिकेटिंग वेज होने चाहिए। हर बच्चे को उसकी लैंग्वेज में समझिए और हर बच्चे को ये लगे कि माँ को सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार है। मामूली कारोबार से लेकर नज़रियाती इनकलाब तक के मुख्तलिफ काम जो इज्तमाही दायरे में सर अंजाम पाते हैं, इनमें कोई भी ऐसा शख्स मुश्किल से कामयाब हो सकता है जो आम इंसानी ताल्लुकात के लिहाज से कोताह हो। कोताह क्या होता है? कम नज़र आना, जिसको कम दिखता है। मुराद क्या है सारी बात का? कि चाहे आपके कारोबार चला रहे हैं, आपको उसमें भी राबते रखने पड़ते हैं, आप नज़रियाती इनकलाब ला रहे हैं, लोगों की आइडियोलॉजीज चेंज कर रहे हैं, सोच ला रहे हैं, मिलकर इज्तमाही काम करते हैं, तो आपको राबते रखने पड़ेंगे। खलवत गजी क्या होता है? तनहाई पसंद और बेनियाज़ खलाइक हो, लोगों से बेनियाज है। नस्बी और रहमी राबते, इज्दवाजी रिश्ते, खुद पैदा करदा दोस्तियाँ और अलायक। अलायक क्या होता है भाई? कुरान में इस लफ्ज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ है, फतकत्तौ बैनहुमुल असबाब, जहाँ मुशरिकों का जिक्र है, शिर्क करने और मुशरिक कि क्यामत के दिन उनके ताल्लुकात टूट जाएंगे। तो बेसिकली अलायक वही लफ्ज़ है जो ताल्लुक है, अलायक अलका से चिपका हुआ। अलका माँ के पेट में बच्चे की एक फॉर्म होती है ना, तो मुराद यही है कि साथ जुड़े हुए लोग। गम और मसरतों की शिरकत, मुलाकातें और सलामों प्याम एक इंसान की कुव्वत नफूस को बढ़ाते हैं। ज़ाती ताल्लुकात और शख्सी लिहाजदारियाँ गैर शौरी तौर पर बड़े बड़े असूली मामलात का रुख बदल देती हैं, और इनकी वजह से कितने ही सियासी फैसले किसी ख़ास सूरत में तय पा जाते हैं। बिलमूम इंसानी क़्यादत में वही शख्सियत कामयाब रहती है जिसके अलायक का दायरा वसी हो और वो ख़ुद वसी तर करे और हर ताल्लुक़ के हकूक़ अदा करे। बात वाज़े, मुश्किल तो नहीं है? अपने लिए ये सोचें कि मैंने अपने हर ताल्लुकदार, रिश्तेदारी, दोस्ती, हमसाए, बच्चे, उनके अंदर दिलचस्पी लेकर उनके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है। इस पहलू से जब हम उसने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस शख्सियत पर निगाह डालते हैं, तो नस्बी, खूनी, सहरी, रज़ाई और विलाई। विलाई क्या होती है? विलायत का ताल्लुक मुख्तलिफ तरह से होता था उस दौर में, वही है, दोस्ती कह लीजिए। विलाई अलायक का दायरा बड़ा वसी पाते हैं। नीज़ इसके साथ साथ दोस्ती और रफाकत और आम शख्सी ताल्लुकात का हल्का रोज़ अफसूँ देखते हैं। फिर इन गुनागू, गुनागू कहते हैं ना, गुनागू का कई कलर, मल्टी। अलायक से नबी सल्लम किसी इंसान गुरेज, गुरेज कौन होता है? गरजा, ये फारसी का लफ्ज़ है भागना, तो गुरेज भागना, यानी इंसानों से भागते नहीं थे। किसी इंसान गुरेज बरतर शख्सियत की तरह बेनियाजी नहीं बरतते, और इसको बोझ यानी बारे गिरां क्या होता है, बोझ और दर्द सर नहीं समझते, बल्कि इनको हुस्नो खूबी से निभाते हैं, इनके हकूक अदा करते हैं और इनको इस्तेहकाम देते हैं। बेहतरीन रिश्तों का भी, बेहतरीन कौन से होते हैं? दूर के रिश्तेदारों का भी इतने एहतराम और लिहाज नबी सल्लम का था कि जमात को ताकीद की कि जब तुम मिस्र को फतह करो तो इसके बाशिंदों से हुस्ने सलूक करना, क्योंकि इनकी तरफ से तुम पर सिला रहमी की जिम्मेदारी आयद होती है। वजाहत फरमाई कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा इन्हीं में से हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन वसी ज़ाती ताल्लुकात ने भी इस्लामी तहरीक के फ़रूग़ और दावत हक़ के अवामी नफाज को बढ़ाने में बड़ा भारी असर डाला है। मौजू तकाजा करता है कि इन अलायक का भी इजमाली, इजमाली क्या होता है जी? सरसरी, जुमला कहते हैं होलसेल को, यानी मोटा मोटी बात कर लें इस पर, और दिखाया जाए कि ये अलायक किस तरह तहरीक इस्लामी के हक़ में मुफीद साबित हुए और उन्होंने इनकलाब के सियासी अमल को कितना आसान और कामयाब बना दिया। हम मुख्तलिफ अलायक को अलग अलग करते हैं, मतलब समझिए कि ताल्लुकात की मुख्तलिफ बुनियादें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों से कैसे थे? सबसे पहले नस्बी अलायक, यानी नस्ब तो सबसे आगे होता है ना, खून के रिश्ते, नस्ब के नाते के। आपका शजरा नस्ब क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कल्लाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर कुरैश बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन मात बिन अदनान बिन अद बिन मकूम बिन नाहूर बिन तैरह बिन यारब बिन यशजब बिन नाबित बिन इस्माइल बिन अब्राह। कहाँ तक पहुँच गया नसब? حضرت اسماعیل علیہ السلام تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد کے بموجب عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل تک کے نام کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں، چنانچہ نصابوں اور روایات نسب کو پیش کرنے والوں نے ان ناموں میں اختلاف کیا. عدنان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق 21ویں نسبی درجے پہ تھا. اگر آپ گنیں گے نا تو عدنان تک 21 نام ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. 21ویں نسبی درجے پر آتا ہے. زمانی فاصلہ 1157، کتنا ہو گیا؟ ایک صدی 158، 1158 برس کا ہے. قبائل عرب کا تعلق کسی نہ کسی مرتبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جڑ جاتا ہے. اک بن عدنان، برادر مات، جو 21 نمبر پہ تھے، انہوں نے علاقہ غصب یعنی یمن میں جا کر سلطنت قائم کی. اور اشعرین قبیلہ تھا، اشر، تو جیسے سیالکوٹ میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سیالکوٹی، علاقے کی طرف نسبت ہے نا، اسی طرح اشعرین کے خاندان میں ازدواجی تعلق قائم کیا. ان اطراف میں اسلام نے بہت جلد جگہ پیدا کی اور پھر تیزی سے اپنا سایہ رحمت پھیلایا. یاد رکھیے، جہاں بھی مسلمانوں کے تعلقات ہوں گے نا وہاں اسلام بھی پہنچے گا. یمن کے مختلف علاقوں سے وفود مدینہ پہنچے، جن میں خود اشعرین کا وفد بھی تھا. نزار جو 20 نمبر پر آتے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں انمار کی اولاد نجد اور اطراف حجاز میں بسی. ایاد کی اولاد نے سہور اور اس کے اطراف کو مسکن بنایا. اور مدر جو 19 نمبر پر آتے ہیں، اور ربیہ وسط عرب میں فروکش ہوئے یعنی آباد ہو گئے. اب مشہور قبائل کو لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسب ہے، اور ان قبائل کے نام سیرت، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آتے ہیں. آپ نے یہ نام سنے ہوں گے بہت دفعہ سیرت میں. بنو تمیم، تمیم بن مرف بن عد بن طائحہ بن الیاس. پھر بنو غطفان، غطفان بن سعد بن الیاس. بنو اشو، اشو بن غطفان بن سعد بن الیاس. بنو زبیان، زبیان بن بعیس بن رائس بن غطفان سے لے کر الیاس تک. بنو فرازہ، فراز بن زیبان سے لے کر الیاس تک. بنو حوازن، حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن اقیس اعلان بن قیس بن الیاس، جو 18 نمبر پہ آیا نمبر. بنو سعد، سعد بن بکر بن حوازن الیاس تک. بنو سقیف، سقیف بن حوازن سے لے کر الیاس تک. بنو سلیم، سلیم بن منصور سے لے کر الیاس تک. حزلی، حزل بن مدرکہ، جو 17 نمبر ہے. بنو ہون، ہون بن خزیمہ 16 نمبر ہے. پھر اسی طرح ویشی، ویش بن قارہ بن ہون بن خزیمہ. اور ازلی، ازل بن قارہ قبیلہ تھا، اس کے نام کے ساتھ کچھ آتا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ دھوکہ دیا تھا. ازل بن قارہ بن خزیمہ. پھر اس کے بعد ہے بنو اسد، اسد بن خزیمہ سے خزیمہ تک. بنو نظر، بنو کنانہ، نظر بن کنانہ. بنو مستلق، مستلق خزیمہ بن عبد منات بن کنانہ. الاحابیش کس کو کہتے ہیں؟ گروہوں کو. احابیش بن کنانہ. بنو مالک، مالک بن نظر بن کنانہ. قریشی، فہر یا قریش بن مالک. بنو محارب، محارب بن فہر. بنو تیم، تیم بن غالب بن فہر. بنو اوف، اوف بن لوئی. بنو عامر، عامر بن لوئی. بنو حارث، حرس بن لوئی. بنو خصیص، حصیص بن کعب بن لوئی. بنو سہم، سہم بن کعب. بنو جمح، جمح بن کعب. بنو عدی، عدی بن کعب. بنو کلاب، کلاب بن مرہ. بنو تیم، تیم بن مرہ. بنو مخزوم، مخزوم بن مرہ. بنو قصی، قصی بن کلاب. بنو زہرہ، زہرہ بن کلاب. اسدی، اسد بن عبد العزیٰ بن قصی. مطلب بن مطلبی، مطلب بن عبد مناف. بنو امیہ، امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. نوفلیون، نوفل بن عبد مناف. اور بنو ہاشم، ہاشم بن عبد مناف. یہ وسیع نسبی تانہ بانہ اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ مراتب اعلیٰ پر فائز ہونے والے بے شمار رفقاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مربوط ہیں. یعنی یہ جتنے ہم نے مختلف قبائل کے نام پڑھے ہیں، تو مختلف صحابہ کرام ان قبائل میں سے تھے. میں یہ سارے نسب پڑھتے ہوئے ایک چیز سوچ رہی تھی کہ جو بچہ زنا سے پیدا ہوتا ہے، اس کا تو کسی کو نام نشان نہیں پتا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ عربوں میں نسب کتنا عام تھا، اور نسب کے نام پر ان کی آگے سے آگے سے آگے کلاسیفیکیشن ہوتی تھی. نسل در نسل یہ آگے ان چیزوں میں بٹے ہوئے تھے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں تو ہمارا لائف سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. خاندان اور فیملیز جو ہوتی ہیں نا، یہ بندے کو جوڑ کے رکھتی ہیں. گناہ کی جھجھک ہوتی ہے. اپنے خاندان میں آ کر کوئی بڑے سے بڑا زانی بھی غلط کام نہیں کرتا، बहू बेटी का ख्याल हर एक को होगा, बाहर की दुनिया में कोई कुछ भी करे। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो गई ना, तो आप देखिए कि रिवायात भी फिर उसके हिसाब से बदल गई। फिर इसके बाद ये कि हज़रत उमर फ़ारूक का नसब, हज़रत उमर फ़ारूक का नसब किससे मिलता था? हज़रत उमर फ़ारूक का नसब जर्राह बिन अदी बिन काब से था, और हज़रत अबू उबैदा का नस्ली रिश्ता जर्राह बिन अदी से मिलता है। सैयदा आमिना जो नबी सल्लम की वालिदा थी, वहाब बिन अब्द मुनाफ बिन जोहरा बिन कल्लाब से थी। इनकी औलाद हैं कल्लाब बिन मुर्रा ही के भाई तैम की औलाद में से हज़रत अबू बकर हैं। साद अशरा मुबशरा में जो थे, मालिक बिन उहैब बिन मनाफ के वास्ते से नबी सल्लम के ताल्लुक़दार हैं। उस्मान बिन तलहा कलीद बरदार, क्या मतलब? जिनके पास चाबी थी काबा की, कलीद बरदारे काबा। अब्दुद्दार बिन कुसई के सुलब से हैं। हज़रत ज़ुबैर, ये भी अशरे मुबशर हैं। अवाम बिन खुवैलद बिन असद बिन अब्दुल्ज़ा बिन कुसई के फ़र्जंद हैं। इसी तरह हदीजा ताहिरा खुवैलद बिन असद बिन अब्दुल्ज़ा बिन कुसई की साहबजादी थी, और वरक़ा बिन नौफल बिन असद इनके भाई थे। हारिस बिन मुतलब बिन अब्द मनाफ के तीन बेटे, अबू उबैदा शहीद बदर हैं, बदर में शहीद हुए थे ये। तुफैल और हुसैन मशहूर सहाबी थे। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हो का नसब भी मतलब ही से जाकर मिलता। हज़रत उस्मान उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ की लड़ी में शामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं की तादाद में रिवायात का इख्तलाफ है, दो के हालात ही महफूज नहीं हैं। एक चचा दरार ने बहुत पहले वफात पाई। आपके चचाओं में हस्बे ज़ेल शख्सियात बहुत नुमायाँ थी, जिनका ताल्लुक़ इस्लामी तहरीक की तारीख से है और जिनके हालात भी महफूज हैं। एक चचा हारिस थे, जो दौरे इस्लाम से कबल ही फौत हुए। इनके चारों बेटे नौफल, अब्दुल्ला, रबिया और अबू सुफियान दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लामी तारीख में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। यही रबिया बिन हारिस है जिनके खून का मुतालबा अपनी तरफ से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले साक़ित करके यानी इनका खून का मुतालबा ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दिया था। फ़तेह मक्का के मौके पर ऐलान किया था कि जाहिलियत के मुतालबा हाय खून आज ख़त्म किए जाते हैं। एक चचा अबू तालिब थे, जिन्होंने नबी सल्लम की हिमायत का हक अदा किया और इस्लामी तहरीक में बावजूद बाहर रहने के दिलो जान से पूरी पूरी मदद पहुंचाई। इनके चारों बेटों में से तीन इस्लाम में आए और हर एक ने बुलंद मुकाम हासिल किया। आज कौन अकील बिन अबी तालिब, जाफ़र तैयार और अली इब्ने अबी तालिब के नामों से नावाकिफ़ हो सकता है? इसी तरह अबू तालिब की दोनों साहबजादियों उम्मे हानी और जमाना भी नूर इस्लाम से बहरामंद हुई। उम्मे हानी का नाम वाक़े मेराज की वजह से बहुत ही नुमाया हुआ। कैसे? उनके घर से थे और अल्लाह के नबी को उन्होंने रोका था कि आप बाहर जाकर ये बात ना कीजिएगा। बिल्कुल। एक चचा हमजा थे, जिन्होंने मारके उहद में शहादत पाई, और इनकी नाश के साथ हिंदा ने इंतहाई दरिंदगी का सलूक किया, जिसका नबी सल्लम को सख्त सदमा हुआ। यही थे जिन्होंने नबी सल्लम के ख़िलाफ़ अबू जहल की बदसलूकी पर गैरत दिखाई और इसे आड़े हाथों लिया और बड़े चैलेंज के साथ इस्लाम कबूल किया। एक चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, उन्होंने भी शुरू से सरपरस्ताना तर्ज अमल रखा, खसूसन बैत अकबा के वक्त गुफ्तगू में बड़ा अहम हिस्सा लिया और अनसार को इनकी ज़िम्मेदारी की नज़ाकत पर तवज्जो दिलाई। इसके अलावा मक्का में रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से बाखबर रखा, और जब कशमकश के नाजुक मराहल से तहरीक गुजर गई तो फिर अपने इस्लाम का ऐलान किया और मदीना चले गए। एक चचा ज़ुबैर भी बेसत से कबल इंतकाल कर गए, नेक दिल थे और हल्फुल फजूल के क़याम में उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की थी। एक चचा अबू लहब था, वो ना सिर्फ कट्टर मुखालिफ था बल्कि मुखालिफाना महाज का सरगर्म कमांडर था। इसकी बीवी भी पक्की दुश्मन इस्लाम थी और नबी सल्लम को अज़ियत देने में पेश पेश रहती। इस शख्स का अंजाम बड़ा ही इबरतनाक हुआ, ताउन से मौत हुई, तीन दिन लाश पड़ी सड़ती रही, लोग करीब न जाते थे, आखिर दीवारों पर से इतने पत्थर फेंके गए कि लाश इनके ढेर में दब गई और यह ढेर कब्र बना दिया गया। तबत यदा भी लहबे वतब, अल्लाह जो बात कह दे वो गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। अबू लहब की बीवी भी रस्सी का फंदा गले में पड़ने से इबरत की मौत मरी। अबू लहब के दो बेटे बहालत कुफर मरे और दो ने जंगे हुनैन के मौके पर नबी सल्लम की इताअत इख्तियार की। दुर्रा बिनते अबी लहब को भी इस्लाम लाने की सआदत मिली। देखिए, बेटी को इस्लाम मिल गया, बाप को नहीं मिला, माँ को नहीं मिला। दो बेटे मुसलमान हो गए, दो कुफर में मारे गए, और ये कौन से कुफर में मारे गए थे आपको पता? जी, जिनको नबी सल्लम की बेटियों से तलाक के लिए मजबूर किया गया था, और उतबा और उतैबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों में एक उम्मे हकीम बैजा थी, कुज़ैर बिन रबिया जो अब्द मनाफ नस्ल से थे, ये इनकी जौजा थी। इनके फर्जंद आमिर फतेह मक्का के दिन इस्लाम में दाखिल हुए, और फिर अब्दुल्ला बिन आमिर भी सहाबी हुए और दौरे उस्मानी में वाली खरासान बने। इन्हीं उम्मे हकीम की दुख्तर अरवा हज़रत उस्मान ज़ुन्नौरैन की वालदा हैं। दूसरी पुपी उमैमा थी, जिनका निकाह जहश बिन रुबाब से हुआ। इनकी साहबजादी उम्मे हबीबा अब्दुर्रहमान बिन औफ की अहलिया थी। दूसरी साहबजादी हमना का पहला निकाह मुसब बिन उमैर से, दूसरा तलहा बिन अब्दुल्ला से हुआ, और दूसरे निकाह से मोहम्मद और इमरान दो फर्जंद इस्लाम के अलमबरदार बने। अब्दुल्ला बिन जहश मारका उहद में शहादत पाकर अपने मामू हमजा के साथ मदफून हुए। तीसरी पुपी आतिका थी, जिन्होंने जंगे बदर से कबल रुआए सालेहा, क्या होता है, सच्चा ख्वाब देखा, और इस सिलसिले में तंज किया कि अब तो बनू हाशिम की लड़कियां भी नबूवत करने लगीं। चौथी पुपी हज़रत सफ़िया थी, जो अवलन हारिस बिन हरब बिन उमैया के निकाह में थी, बाद में बेवा होकर अवाम बिन खुवैलद के अज़्दवाज में गईं। इस निकाह से ज़ुबैर यके अस अशरा मुबशरा मुतवल्लिद हुए, यानी पैदा हुए। साहिब बिन अलवाम बिन के बतन से हैं, जिन्होंने मारका है जिहाद में नुमाया हिस्सा लिया। उन्होंने हमजा जैसे भाई की लाश खाको खून में पड़ी देखी, और दरिंदगी का जो सलूक इनके साथ रवा रखा गया था, इस पर इंतहाई सब्र का मुजाहरा करके उन्होंने एक ज़री मिसाल कायम की। पांचवी पुफी बिर्रा थी, जो अब्दुल असद बिन हिलाल की जौजा थी। अबू सलमाइनी के फर्जंद हैं, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पहले शोहर थे। एक पुफी जिनका निकाह उमैर बिन वहैब से हुआ था, उरवा है। इनके फर्जंद तलीब ने जब इन्हें कबूल इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने किस वालेहाना जज्बे से कहा कि तेरे लिए तेरे मामू का बेटा सबसे बढ़कर खिदमत और मदद का हकदार है। बाखुदा, अगर हम औरतों को भी मर्दों जैसी ताकत होती तो हम इनका बचाव करती और इनके दुश्मनों को जवाब देती। इन लफ्ज़ों में ईमान भी मौजन और एक फुफ्फी की सच्ची मोहब्बत भी बोल रही है। नबी सल्लम के वसी नसबी ताल्लुकात के और बहुत गोशे हैं, मगर यहाँ सिर्फ करीब तरीन दायरे की एक महदूद झलक दिखाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन करापतों ने मुख्तलिफ मराहिल पर तहरीक के हक में मुफीद असरात दिखाए। इसमें शक नहीं कि चूंकि कशमकश असूली असासी और हमागिर होने की वजह से बड़ी संगीन थी, और कुरैश ने बड़ा मजबूत मुखालिफाना महाज देर तक जमाया, लेकिन अंदर ही अंदर करापतें अपना काम करती रहीं। बनु हाशिम ने बहसियत मजमू दूसरों के मुकाबले में हामियाना रवैये का सबूत दिया। कराबत मंदी की वजह से अबू जहल के जुल्म पर हज़रत हमजा का खून खोल दिया गया, और वह जाहली महाज छोड़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। अबुल बख्तरी ने मखसूरी के ज़माने में अबू जहल को इस ज्याती पर टोका कि वो किसी गजाई हदीये को शाब अबी तालिब में जाने से रोके। ये कौन सा वक्त था जब मुसलमान उधर महसूर हो गए थे। हज़रत अब्बास ने खामोशी से मक्का में रहकर नबी सल्लम से तआवुन किया। कुरैश की मजालिस में बारहा गुफ्तगुओं में अपनी करापतों की वजह से हामियाना रंग पैदा हो जाता है। हामियाना क्या था? हिमायत वाला। लोगों ने ये तक सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम अज़ कम मक्का से बाहर अरब में काम करने दिया जाए, और कामयाबी हो जाए तो इसकी कामयाबी हमारी ही कामयाबी होगी। फिर बरसों तक ज़िद्दम ज़िद्दा का चक्कर चलाने के बाद जब मक्का फतह हो गया, तो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते सुनाई देते कि तू एक शरीफ भाई है और शरीफ भाई का बेटा है। फिर यही कराबते दूसरी जानिब से भी बराबर असर अंदाज होती रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइज़ा और क़रबा कैदी बनाकर लाए गए, तो रातों को बंधनों की सख्ती की वजह से इनकी कराहें आपकी नींद उड़ाने का बायस बनी। मक्का में कहत पड़ा तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीजा, और गल्ला और नकदी से मदद की। मक्का फतह किया तो इसके बाशिंदों पर एहसानात की बारिश फरमा दी। जी, यानी आप देखिए कि जिसके नसीब में नहीं हिदायत, वो नबी का रिश्तेदार होके भी हिदायत नहीं ले पाता, असल ये बात है। तो हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए हिदायत का मामला रखना। अभी हमने कौन से रवावित पढ़े हैं नबी सल्लम के? नस्बी। देखिए, हकूक में ना कमी बेशी करे, दिल पे इख्तियार नहीं है। हर बंदा अपने अखलाक और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे मोहब्बत लेता है, पर हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं करें कि इस मोहब्बत की आड़ में अब दूसरों का हक मारने लग जाए।